हरे कृष्ण। तो कल बहुत ही पवित्र दिन है, रामनवमी का अवसर है, तो उस उपलक्ष्य में हम कुछ राम कथा सुनेंगे। तो वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड का अध्याय संख्या 128 है, उसमें से कुछ हम सुनेंगे, जिसमें उस घटना का वर्णन है कि श्री राम का राज्याभिषेक होता है। श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद आ गए हैं अयोध्या में, और उनका किस प्रकार से अब राज्याभिषेक होता है और किस प्रकार का उनका राज्य है, तो उसे हम सुनेंगे। बड़े ध्यान से सुनिए। भरत जी ने मस्तक पर अंजलि बांधकर अपने बड़े भाई श्री राम से कहा। भरत जी ने मस्तक पर अंजलि कैसे बांधी? भरत जी ने अपने मस्तक पर इस प्रकार अंजलि बांधी और अपने बड़े भाई श्री राम से कहा। क्या भाव क्या है? भाव ये है कि उनकी माता के कई चाहती थी कि भरत राज्य करें, लेकिन वे अपने को बिल्कुल योग्य नहीं मानते हैं, राज्य के बिल्कुल योग्य नहीं मानते हैं, और पूरी तरह से श्री राम को समर्पित हैं, और वे जो है राम की सेवा में रहना चाहते हैं, स्वतंत्र राम से स्वतंत्र नहीं रहना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी ये शिक्षा है। जीवात्मा यहाँ पर क्यों आता है? भगवान से स्वतंत्र होने के लिए, भोगने के लिए। लेकिन भरत जी से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि हम स्वतंत्र रूप से ना भोगें और हम नियंता ना बने, राजा राम को ही बनाएं, अपने जीवन का भी राजा राम को बनाएं। राजा का मतलब है जो नियंत्रण करे, तो नियंत्रण हो और हम उनके आज्ञा पालक सेवक बने, हम भोक्ता ना बने और हम नियंता ना बने, भोक्ता नियंता हम भगवान को बनाएं। तो भरत जी ने इस प्रकार से समर्पण किया, समर्पण किया। तो 14 वर्ष तक उन्होंने वो राज सिंहासन पर भी नहीं बैठे, भरत जी 14 वर्ष तक राज सिंहासन पर भी नहीं बैठे, ठीक है, अभी ठीक है। तो चूंकि राम तपस्वी के वेश में है, तो भरत जी ने भी तपस्वी का ही वेश धारण किया, और राम जमीन में सोते हैं, तो भरत जी तीन हाथ नीचे गड्ढा बना करके सोते थे कि अगर राम जमीन में सोते हैं तो मुझे और नीचे सोना चाहिए, तो इसलिए पृथ्वी से भी नीचे तीन हाथ नीचे गड्ढा बना करके सोते थे। और राम भी जंगल के फल मूल खाते हैं, तो वो भी नहीं खाएंगे किसी प्रकार का व्यंजन, वो भी नहीं खाएंगे, तो उनका भी बहुत कठोर नियम था भरत जी का। और अभी राम को जो है वो समर्पण कर रहे हैं, किस प्रकार से? मस्तक पर अंजलि बांध करके अपने बड़े भाई श्री राम से बोले, इस प्रकार से उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांधी और बोले, क्या बोले? आपने मेरी माता का सम्मान किया, आपने मेरी माता का सम्मान किया और ये राज्य मुझे दिया, तो मेरी माता का सम्मान किया आपने। तो कैकेयी ने चूंकि दशरथ जी से वचन लिया था, दो वरदान, और भरत दशरथ जी चूंकि बंधे थे सत्य वचन से बंधे थे, तो दशरथ जी के सत्य प्रतिज्ञा का गलत फायदा उठा करके कैकेयी ने इस प्रकार से भरत जी का राज्य मांगा था। तो भरत दशरथ जी नहीं चाहते थे कि राम जो है वन में जाए, दशरथ जी नहीं चाहते थे। दशरथ जी ने राम को आज्ञा दी थी कि तुम मुझे बंदी बना लो। दशरथ जी ने क्या आज्ञा दी थी राम को? राम तुम मुझे बंदी बना लो और तुम राज्य करो, क्योंकि मैं राज्य के योग्य नहीं हूं और मैं चूंकि स्त्री के अधीन हो गया हूं, तो तुम मुझे बंदी बना लो और तुम राज्य करो, दशरथ जी ये चाहते थे। लेकिन राम ने कैकेयी माता के वचन का आदर किया, कैकेयी माता का सम्मान किया और दशरथ जी के सत्य की रक्षा की, पिता के सत्य की रक्षा की, और राज्य भरत जी को दिया। तो भरत जी कह रहे हैं कि ये राज्य आपने मुझे दिया मेरी माता का सम्मान करने के लिए, पिता का, पिता का उस प्रकार से वचन नहीं माना, पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए पिता की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किया। पिता की इच्छा थी कि राम वन में न जाए, राम राज्य करें और मुझे बंदी बना लिया जाए, लेकिन श्री राम ने जो है पिता के सत्य की रक्षा की, पिता की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किया, पिता के यश की रक्षा की, पिता के सम्मान की रक्षा की, नहीं तो पिता का सम्मान फिर क्या रहता। अगर राम पिता की आज्ञा से अगर राम अपने पिता को बंदी बना लेते तो फिर पिता का सम्मान क्या रहता, है ना। तो पिता सम्मान नहीं चाहते थे, पिता बंदी बनना चाहते थे, जैसे औरंगजेब ने बंदी बना लिया था अपने पिता को, किसको, जहांगीर को, राजा बन गया था, शाहजहां, हाँ क्षमा करना, शाहजहां को बंदी बना लिया था और राजा बन गया था। तो शाहजहां तो नहीं चाहता था कि मुझे बंदी बनाया जाए, ये उसने बंदी बना लिया, लेकिन दशरथ जी चाहते थे कि मुझे बंदी बना लिया जाए, लेकिन राम ने उनको बंदी नहीं बनाया और राज्य भरत जी को दिया। तो अपनी माता, मेरी माता का सम्मान किया, ये राज्य मुझे दे दिया, जैसे आपने मुझे दिया उसी तरह मैं फिर आपको वापस दे रहा हूँ। ये धर्म के जो है कुछ ऐसे सिद्धांत हैं कि आपने मुझे राज्य दिया तो अब हो मेरे, मेरा अधिकार है, मैं जिसको चाहूँ दे दूँ, तो मैं अब आपको दे रहा हूँ। कैकेयी ने राज्य भरत जी की मांगा था कि भरत जी को हमेशा के लिए राज्य मिल जाए, तो हमेशा के लिए भरत जी को राज्य दे दिया राम ने। लेकिन अब भरत जी क्या कर रहे हैं, हमेशा के लिए राज्य राम को दें, क्योंकि उनका अधिकार है देने का, वो किसी को दे सकते हैं। तो ये जो है धर्म के कुछ सिद्धांत हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपने मुझे दिया उसी तरह मैं अब आपको वापस दे रहा हूँ। भोजिता मामिका माता दत्तम राज्य मिदम तब, दत्तम राज्य मिदम मम तद्दामी मन पुनस्तोभ्यम यथा तुम अधदाम। अत्यंत बलवान बैल जिस बोझे को अकेला उठाता है उससे बछड़ा नहीं उठा सकता, उस पर मैं भी इस भारी भार को उठाने में असमर्थ हूँ। जो बहुत बलवान बैल है तो वो जो है भार उठा लेता है और बैलगाड़ी में जोता जाता है और खींचता है बैलगाड़ी को, बछड़ा नहीं खींच पाता। तो आपने मेरी माता के कहने से मुझे राज्य दे दिया लेकिन मैं योग्य नहीं हूँ, एक बछड़ा कैसे बैलगाड़ी खींचेगा और कैसे भार उठाएगा, है ना। तो भरत जी कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल योग्य नहीं हूँ, है ना। तो ये भावना है, ये भावना है, हर कोई राज्य पाना चाहता है, योग्यता हो या ना हो राज्य पाना चाहता है। क्यों, भोगने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए पद चाहते हैं, हर व्यक्ति जो है बड़ा पद पाना चाहता है, योग्य नहीं है, योग्यता नहीं है, लेकिन बड़ा पद मिलने से क्या होगा, इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, भोगने की सुविधा मिलेगी, इसलिए, है ना। लेकिन भरत जी क्या सोचते हैं, इंद्रिय तृप्ति जीवन का लक्ष्य नहीं है, हमारे जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है, तो फिर हमें कोई पद तभी लेना चाहिए जब मैं इसके योग्य हूँ। अगर कोई बड़ा पद मिलता है तो एक भार समझ करके वो लेते हैं कि भार मैंने लिया है और कैसे मैं इस भार को उठाऊंगा, उनकी चिंता हो जाती है। भरत जी ने राज्य जो लिया तो उनके लिए एक चिंता हो गई कि ये भार कैसे किसी प्रकार से मुझे चलाना है, उठाना है। और 14 वर्ष तक जो है भरत जी ने ये भार लिया अपने ऊपर, और जैसे राम आए भार दे दिया कि मैं इस भार को उठाने में असमर्थ हूँ, है ना। तो ये भावना होती है, जब जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है तो फिर कोई भी बड़ा पद मिले तो वो एक भार माना जाता है, ये इंद्रिय तृप्ति की सुविधा नहीं मानी जाती कि इंद्रिय तृप्ति की सुविधा मिली है। तो भरत जी कह रहे हैं कि मैं इस भार को उठाने में असमर्थ हूँ, छोटा सा बछड़ा कैसे उठाएगा भार, एक जो है बलवान बैल ही भार उठा सकता है, और आप क्या हैं, बलवान बैल हैं और मैं क्या हूँ, एक छोटा बछड़ा हूँ। धुर्मे का गिना निस्ताम वृषभेण बलियसाम किशोरे वन गुरुम भारम नवोढुम अहम उत्सहे। जैसे जल के महान वेग से टूटे या फटे हुए बांध को, जबकि उससे जल का प्रखर प्रवाह बह रहा हो, बांधना बहुत कठिन है, उसी प्रकार राज्य के खुले हुए क्षेत्र को ढक पाना अपने लिए असंभव मानता हूँ, बहुत मुश्किल है। बांध अगर फट जाए है ना, और पानी बहे, अब कौन रोक सकता है उसको, है ना। उसी प्रकार से ये खुला राज्य, राज्य एकदम खुला है, यानी पूरा का पूरा मेरे ऊपर भार आ गया, मेरे ऊपर नियंत्रण करने का अधिकार आ गया, तो ये क्या है मेरे लिए असंभव, राज्य के तो मेरे लिए संभव। वारिडे गे न महता भिन्न सेतु रेवचरण दुर्बंधन वेदम मन्ने राजक्षेत्रम असंवृतम। हे वीर, जैसे गधा घोड़ों की और कौवा हंस की बराबरी नहीं कर सकता, गधा घोड़े की बराबरी नहीं कर सकता और कौवा हंस की गति का अनुसरण नहीं कर सकता, उस तरह मैं आपके मार्ग का अनुकरण नहीं कर सकता, नकल नहीं कर सकता हूँ। तो गधा जो है कभी बैलगाड़ी नहीं खींच सकता है ना, और कौवा हंस की जाल, हंस जो है समुद्र पार करता है, तो कौवा कितना बढ़ेगा, नहीं कर सकता। तो मेरा जो है आपके साथ में कोई मुकाबला ही नहीं है, है ना। तो भरत जी अपनी स्थिति समझ रहे हैं, मेरी स्थिति क्या है, सेवा करने की है, सेवा करने की। तो इससे शिक्षा क्या मिलती है हम लोगों को, हम जीवात्माओं को शिक्षा मिलती है, कि हमें कोई पद मिल जाता है, ऊंचा पद मिल जाता है, तो हम उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति में उसका दुरुपयोग करने लगते हैं और कई प्रकार के अपराध करने लगते हैं, अपना अधिकार जताने लगते हैं, अपना नियंत्रण करने लगते हैं, तो इस तरह से बहुत से अपराध होते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि हम जो है सेवक का सेवक के सेवक के सेवक के रूप में रहें और अपराधों से सुरक्षित रहें। गतिम खर एवा स्वस्थ है हंस से विचमाए सहा नानवे तुम उत्सहे वीर है तब मार्गम अरिंदम। जैसे घर के भीतर के बगीचे में एक वृक्ष लगाया गया, कौन कह रहा है, कौन कह रहे हैं, भरत जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, राम से कह रहे हैं कि हे राजन, जैसे घर के भीतर के बगीचे में एक वृक्ष लगाया गया, वो जमा जमकर बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा इस पर चढ़ना कठिन हो रहा था, उसका तना बहुत बड़ा और मोटा था, उसमें बहुत सी शाखाएं थीं, उस वृक्ष में फूल लगे किंतु वो अपने फल नहीं दिखा सका, इसी दशा में टूटकर धराशायी हो गया। लगाने वालों ने जिन फलों के उद्देश्य से उस वृक्ष को लगाया था वो फल नहीं मिले। यही उपमा उस राजा के लिए भी हो सकती है जिसे प्रजा ने अपनी रक्षा के लिए पाल पोस कर बड़ा किया और बड़े होने पर वो उनकी रक्षा से मुंह मोड़ने लगे। इस कथन के तात्पर्य को आप समझें, यदि भर्ता होकर भी आप हम वृत्तियों का भरण पोषण नहीं करेंगे तो आप भी उस निष्फल वृक्ष के समान ही समझे जाएंगे। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि आपके ऊपर बड़ा दोष आएगा, अगर आप राजा नहीं बनेंगे तो आपके ऊपर बड़ा दोष लगेगा। कैसा दोष, जैसे वृक्ष को खूब पाल पर पोस करके बड़ा किया, खूब बड़ा हो गया और फिर जो है वो फल ना दे, धराशायी हो जाए, फल ना दे, तो अगर आप मना करें राज्य के लिए तो आपके राज्य से हमें क्या मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा, बहुत सुख है, बहुत सुविधा है। राम राज्य का जो वर्णन है, राम राज्य का जो गुण है वो अभी भी बहुत प्रसिद्ध है, राम राज्य की चर्चा अभी भी होती है कि राम राज्य, तो राम राज्य का कितना बड़ा फल है, राम के राज्य में रहने का कितना बड़ा फल है, कितना सुख है, कितनी सुविधा है, जीवन की कितनी सुविधाएं हैं आप सोच नहीं सकते हैं, कितनी सुविधाएं हैं जीवन की, और आप ना दें और हम राजा ना बने तो आपका बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, आपकी ओर से बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। जैसे पेड़ को खूब पाल पोस के बड़ा किया और फूल भी उसमें लगे, ये फल ना दे, धराशायी हो जाए, तो भरत जी जो है श्री राम के ऊपर इस प्रकार का भी जो है दोष लगा रहे हैं अगर आप राज्य नहीं लेंगे। श्री राम अब तो हमारी यही इच्छा है कि जगत के सब लोग आपका राज्याभिषेक देखें, मध्याह्न काल के सूर्य की भांति आपका तेज और प्रताप बढ़ता रहे। दोपहर का सूर्य, दोपहर का सूर्य तेज बढ़ता जाता है ना, लेकिन अपराह्न काल में घट जाता है। तो आपका जो राज है वो किसी इस प्रकार का हो, दोपहर के सूर्य की तरह हो, तेज बढ़ता रहे, कभी अस्त ना हो, है ना। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि आपका जो है राज्य इस प्रकार से हो। जगदाद्याभिषिक्तं त्वाम् अनुपश्यतु राघवो प्रतिपन्तं मेवादित्यं मध्याह्ने दीप्य तेजसम्। आप विविध वाद्यों की मधुर ध्वनि, कांची और नूपुरों की झनकार और गीत के मनोहर शब्द सुनकर सोएं और जागें। आपके सोते समय भी खूब बढ़िया संगीत बजना चाहिए और जागते समय भी आपको का संगीत खूब बजना चाहिए। उसी संगीत में आप सोएं, उसी संगीत में आप जागें, तो ये जो है हमारी कामना है। जब तक नक्षत्र मंडल घूमता है, जब तक ये पृथ्वी स्थित है, तब तक आप इस संसार के स्वामी बने रहें। जब तक पृथ्वी हो, है ना। तो प्रभुपाद ने कहा है, हालांकि राम राज्य तो 10,000 साल या 11,000 साल तक रहा, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि हम आगे भी ला सकते हैं, कभी भी ला सकते हैं राम राज्य को, लेकिन अंतर केवल सिद्धांत यही है कि हमें अपने जीवन में उनको जो है नियंता बनाना है, उनको अपना राजा बनाना है, राम को। हमें राम के आदेशों का पालन करना है, हमें उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करना है। हम स्वयं भोक्ता ना बने, हम स्वयं नियंता ना बने, है ना, तो राम का राज्य प्राप्त हो सकता है, है ना। तो ये जो है विशेष बात है। भरत की ये बात सुनकर श्री राम ने तथास्तु कहकर उसे मान लिया और वे सुंदर आसन पर विराजमान हुए। भरतस्य वचा श्रुत्वा राम पर पुरंजय तथेति प्रतिजग्राह निशादासनेशोभे। फिर शत्रुघ्न जी की आज्ञा से निपुण नाई बुलाए गए, जिनके हाथ हल्के और तेज चलने वाले थे। उन सबने श्री राम को घेर लिया। नाई क्या करेंगे, जटा है, जटा उतारेंगे, है ना। तो 14 वर्ष में कितनी जटाएं हो जाएंगी, अगर आप 14 साल तक अपने बाल ना बनाएं तो कितने बड़े बाल हो जाएंगे। और फिर जटाएं बनाई थी बरगद के दूध से, जो जटाएं बनाई थी वैसे ही बाल उलझ जाते हैं, और बड़ा मुश्किल होता है। डेली हम शिखा को सुलझाते हैं तो कितना टाइम लगता है, जरा सी शिखा को फिर पूरे बाल, तो बल्कि उन्होंने जानबूझ करके बरगद का दूध मंगाया था जटाएं बनाने के लिए। 14 साल तक जो है बालों की कोई सेवा नहीं की, अब इनको जो है छुट्टी देनी पड़ेगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं, सुलझाया नहीं जा सकता इन बालों को, अब इनको छुट्टी देनी पड़ेगी। तो नाई बुलाए गए, चारों ओर से नाइयों ने घेर लिया, सब ने श्री राम को घेर लिया। पहले भरत ने स्नान किया, फिर महाबली लक्ष्मण ने, और भरत जी ने भी अपनी जटाएं, वो थोड़ी पीछे रहेंगे, तो भरत जी ने अपनी जटाएं बनाई थी। तो भरत जी स्नान किया, फिर लक्ष्मण जी ने, फिर वानर राज सुग्रीव और राक्षस राज विभीषण ने भी स्नान किया। तब जटा का शोधन करके श्री राम ने स्नान किया। फिर विचित्र पुष्पमाला, सुंदर अनुलेपन, बहुमूल्य पीताम्बर धारण करके आभूषणों की शोभा से प्रकाशित होते हुए वे सिंहासन पर विराजमान हुए। इच्छाओं कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले शोभाशाली पराक्रमी वीर शत्रुघ्न ने श्री राम और लक्ष्मण को श्रृंगार धारण कराया। उस समय राजा दशरथ के सभी रानियों ने स्वयं अपने हाथों से सीता जी का मनोहर श्रृंगार किया। पुत्र वत्सला कौशल्या ने अत्यंत हर्ष उत्साह के साथ बड़े यत्न से समस्त वानर पत्नियों का सुंदर श्रृंगार किया। वानरों की पत्नियां, ये सुग्रीव आदि वानर आए हुए थे ना, तो उनकी जो पत्नियां हैं वो भी आई थी, भगवान के पुष्पक विमान में बैठ करके वानरों की पत्नियां भी आई थी, है ना। तो वानरों की जो स्त्रियां हैं वो वानर जैसी नहीं है, ये किमपुरुष, ये किमपुरुष कहलाते हैं, ये जो है वानर जाति नहीं है वास्तव में, हम लोग इनको वानर कहते हैं, ये किमपुरुष हैं, किमपुरुष जाति के, किमपुरुष जाति के जो पुरुष हैं तो उनके जो है कुछ शरीर के जो अंग हैं वो वानर जैसे होते हैं या रेस जैसे होते हैं, लेकिन शरीर उनका जो है मनुष्यों की तरह होता है, शरीर मनुष्यों की तरह होता है और मनुष्यों से ज़्यादा उनके अंदर शक्तियाँ होती हैं, ठीक किम पुरुष हैं। और जो स्त्रियाँ हैं वो जो है मनुष्यों की स्त्रियों जैसी होती हैं, उनमें बानर के शरीर के कोई लक्षण नहीं होते हैं। या जो ऋछ हैं, जामवान की पुत्री क्या नाम जाम्बवती, भगवान कृष्ण ने विवाह किया था, तो ऋषि की कन्या वो ऋषि जैसी थोड़ी थी। तो बानरों की जो स्त्रियां हैं, ऋषियों की स्त्रियां हैं, वो बानरों जैसी ऋषि जैसी नहीं है ना। तो माता कौशल्या ने बानर पत्नियों का सुंदर श्रृंगार किया, बहुत सुंदर। ततो वानर पत्नी नाम सर्वासामेव शोभनम चकार यत्नात् कौशल्या प्रहृष्टा पुत्र वत्सला। तत्पश्चात शत्रुघ्न जी की आज्ञा से सारथी सुमंत्र जी एक सर्वांग सुंदर रथ जोड़ कर लाए। अग्नि सूर्य के समान उस दिव्य रथ को खड़ा देखकर श्री राम उस पर आरूढ़ हुए। सुग्रीव और हनुमान जी दोनों देवराज इंद्र के समान कांतिमान थे। सुग्रीव हनुमान दोनों इंद्र के समान कांतिमान, क्योंकि इनके पास ऐसी शक्तियां हैं कि जब चाहें तो छोटा रूप बना लें, बड़ा रूप बना लें और मनुष्य का भी रूप धारण कर सकते हैं। ये जो बानर हैं, ये किम्पुरुष जाति के बानर हैं, इनमें मतलब ऐसी चीज़ नहीं है, ये सामान्य बानर नहीं है। सुग्रीव हैं या हनुमान हैं, ये सामान्य बानर नहीं है। अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य का भी रूप धारण कर सकते हैं या कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, और छोटा बड़ा हर प्रकार का रूप धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंद्र के समान कांतिमान हैं कौन, हनुमान और सुग्रीव। दोनों के कानों में सुंदर कुंडल शोभा पा रहे हैं। दोनों ही स्नान करके दिव्य वस्त्रों से विभूषित होकर के नगर की ओर चले हैं। सुग्रीव हनुमान भी चले हैं और श्री राम चूँकि 14 साल का वनवास था तो वे रथ में नहीं बैठ सकते हैं। वनवास के जो नियम है उसमें रथ में नहीं बैठ सकते हैं, 14 साल के वनवास के बाद ही रथ में वो बैठे, है ना। पुष्पकमान में भी बैठ करके आए भरत के कारण, कि भरत जी शरीर छोड़ देंगे अगर 14 साल पूरे हुए और श्री राम ने एक दिन भी अगर विलम्ब किया तो शरीर छोड़ देंगे। तो इस कारण से श्री राम जो है शीघ्र आते शीघ्र वहाँ पर आए। तो 14 साल का वनवास जब पूरा हो गया तब पुष्पकमान में बैठ करके श्री राम आए। तो ये सब बड़े विचार करने वाली बातें होती हैं। सुग्रीव की पत्नियां और सीता जी समस्त आभूषणों से विभूषित और सुंदर कुंडलों से अलंकृत हो नगर देखने की उत्सुकता मन में लिए सवारियों पर चली। तो सुग्रीव की पत्नियां हैं, सीता जी हैं, नगर देखने के लिए चल रही हैं। सर्वाभरण दुष्टाश्च युष्टाशो में कुंडला सुग्रीव पत्निया सीता चा द्रष्टुम नगरम उत्सुका। अयोध्या में राजा दशरथ के मंत्री पुरोहित वशिष्ठ जी को आगे करके श्री राम के राज्याभिषेक के विषय में आवश्यक विचार करने लगे। दशरथ जी के जो मंत्री हैं वशिष्ठ जी पुरोहित हैं, उनको आगे करके विचार कर रहे हैं कैसे तैयारी की जाए, राम के राज्याभिषेक की तैयारी की जाए। पहले सब तैयारी युवराज के पद पर हो रही थी, राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त करना था। राजा दशरथ तो राजा रहेंगे लेकिन राम युवराज बनेंगे। 14 साल पहले जब तैयारी चल रही थी तो राम को युवराज बनाने की तैयारी। युवराज का मतलब है कि अगले राजा निश्चित हैं, ये युवराज का मतलब है कि भविष्य में यही राजा निश्चित हैं। तो युवराज पद पर अभिषेक होना था श्री राम का, अभी राज अभिषेक होना है क्योंकि दशरथ जी शरीर छोड़ चुके हैं। तो विचार कर रहे हैं आवश्यक कार्य क्या करना है राज्य अभिषेक के लिए। 3 मंत्री हैं, एक का नाम है अशोक, दूसरे के नाम है विजय, तीसरे का नाम है सिद्धार्थ। ये 3 मंत्री हैं एकाग्रचित्त होकर के श्री राम के अभ्युदय और नगर की समृद्धि के लिए परस्पर मंत्रणा करने लगे कि कैसे श्री राम का महत्व बढ़े और नगर की शोभा भी हो। तो किस प्रकार से विचार कर रहे हैं, उन्होंने सेवकों से कहा विजय के योग्य जो श्री राम हैं उनके अभिषेक के लिए जो जो आवश्यक कार्य करना है सब तुम लोग करो इसको। सेवकों से कहा। इस प्रकार आदेश देकर वे मंत्री और पुरोहित श्री राम के दर्शन के लिए तत्काल नगर से बाहर निकले। जैसे हजार नेत्रों वाले इंद्र हरे रंग के घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर यात्रा करते हैं, उसी प्रकार श्री राम एक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो उत्तम नगर की ओर चले। उस समय भरत ने सारथी बनकर घोड़ों की बाग डोर अपने हाथ में ले रखी है। भरत जी क्या बने हैं? सारथी। सारथी तो कितने हैं, लेकिन भरत जी स्वयं सारथी बने, स्वयं लेके आएंगे। तो भरत जी स्वयं अयोध्या नहीं गए, राम ने जब से अयोध्या छोड़ी तो भरत जी ने भी अयोध्या छोड़ दी, और चित्रकूट से जब वापस आए अयोध्या नहीं गए, नंदीग्राम में रह करके। और भगवान राम भी जो है पुष्प भगवान से आए तो नंदीग्राम में आए थे। अब नंदीग्राम से जो है भरत जी जा रहे हैं अयोध्या, तो श्री राम के सारथी बन करके जा रहे हैं, राम को लेके जा रहे हैं, राम के बिना अयोध्या नहीं जाएंगे, है ना। तो भरत जी स्वयं जो है सारथी बन करके जा रहे हैं, और शत्रुघ्न छत्र लगाया है, लक्ष्मण श्री राम के मस्तक पर चमर डुला रहे हैं। एक को लक्ष्मण थे, दूसरी ओर राक्षसराज विभीषण खड़े थे। लक्ष्मण एक तरफ क्या कर रहे हैं, चमर डुला रहे हैं, दूसरी तरफ राक्षसराज विभीषण चमर डुला रहे हैं। दो व्यक्ति चमर डुला रहे हैं, लक्ष्मण जी एक तरफ, दूसरी तरफ विभीषण चमर डुला रहे हैं। चंद्रमा के समान चमर है, चंद्रमा के समान सफेद चमर, अभी चमर डुलाया जा रहा है, देखो आश्चर्य है ना। कथा का जो है कैसा प्रभाव है, अभी अभी चमर डुलाया जा रहा है। तो दोनों चमर डुला रहे हैं। श्वेतम च बाल विजनम जंग्रे परिता स्थित अपरम चंद्र संकाशम राक्षसेन्द्रो विभीषण। उस समय आकाश में खड़े हुए ऋषियों और मुरुगणों सहित देवता श्री राम के स्तवन की मधुर ध्वनि सुन रहे थे। ऋषि और जो देवता हैं आकाश में खड़े हो सकते हैं, जमीन में जगह नहीं होगी कहाँ खड़े होंगे, तो उनके पास जो है इतनी योग्यता है, आकाश में निराधार खड़े हो सकते हैं देवता लोग और ऋषि लोग। तो ये जो है उनके पास ऐसी सुविधा है, आकाश में खड़े होकर के देख सकते हैं, और बहुत बढ़िया दिखाई देता है आकाश में, आकाश में खड़े होकर के देख रहे हैं और इस स्तवन की मधुर ध्वनि सुन रहे हैं। ऋषि संघ है तदा आकाशे देव समृद्धण स्तुए मानस रामस सुस्रो सुस्रुवे मधुर ध्वनि। तब महातेजस्वी सुग्रीव शत्रुंजय नामक पर्वताकार गजराज पर आरूढ़ हुए। सुग्रीव जो है गजराज पर आरूढ़ हुए, अगर सुग्रीव अपना रूप धारण करें तो वो तो एक पर्वत के समान वो स्वयं है, लेकिन उन्होंने छोटा रूप धारण किया है सुग्रीव में, इसलिए हाथी पर वो बैठ सकते हैं, नहीं तो ये बानर इतने बड़े बड़े हैं हाथी तो पिचल जाएगा उसमें। तो पर्वत के आकार के जो है गजराज शत्रुंजय नाम है हाथी का, उसके ऊपर बैठे हैं सुग्रीव। तथा शत्रुंजय नाम है कुंजरम पर्वतोपम आरुरो है महातेजा सुग्रीवा प्लब घर सभा। बानर लोग 9000 हाथियों पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। बानरों को जो है हाथी दिए गए, उनके ऊपर बैठ करके यात्रा करो। उस समय बानर मानव रूप धारण किए हुए थे। कौन? बानर, जितने बानर हैं वो मनुष्य रूप धारण किए हैं। बानरों में ऐसी शक्ति थोड़ी है जो डार्विन कहता है कि बंदर से मनुष्य बने हैं, डार्विन कहता है तो ये बंदर से मनुष्य कोई नहीं बन सकता, लेकिन वे जो बानर हैं किम पुरुष हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार जैसा रूप चाहे वैसा धारण कर सकते हैं। तो मनुष्य रूप धारण किए हैं सब बानर, सुग्रीव भी हनुमान भी सब लोग मनुष्य रूप धारण किए हैं और आभूषणों से भी भूषित हैं सब। नवनाग सहस्राणी ये राजस्थाए बानर मानसम विग्रह कृत्वा सर्वाभरण भूषिता। श्री राम शंख ध्वनि दुंदुभियों के गंभीर नाद के साथ महलों से अलंकृत अयोध्यापुरी की ओर चले। महलों की कतारें हैं, अयोध्यापुरी जो है महलों से भरी है। संघ शब्द प्रणादेशा दुंदुभी नाम जनिस्थुन प्रेय पुरुष व्याग्रस्ताम प्रेम हर में मालिनी। अयोध्या वासियों ने श्री राम को रथ पर बैठकर आते देखा, उनका शरीर दिव्य कांति से प्रकाशित हो रहा था, उनके आगे आगे सैनिकों का जत्था चल रहा है। ददृशस्ते समायांतम राघवम सापुरहासरम विराजमानम वपुषा रथेनाति रथम तदा। उन्होंने उन सब ने आगे बढ़कर श्री राम को बधाई दी और श्री राम ने भी बदले में उनका अभिनंदन किया। फिर वे सब पुरवासी भाइयों से घिरे हुए महात्मा श्री राम के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार मंत्रियों ब्राह्मणों और प्रजा से घिरे हुए श्री राम सुशोभित हो रहे थे। सबसे आगे बाजे वाले चल रहे हैं, आनंद मग्न होकर के तुरही करताल और स्वस्तिक बजाते हैं और मांगलिक गीत गाते हैं। उनके साथ श्री राम नगर की ओर बढ़ने लगे। श्री राम के आगे अक्षत और सुवर्ण युक्त पात्र, गऊ, ब्राह्मण, कन्याएं हाथ में मिठाई लिए अनेक अनेक मनुष्य चल रहे हैं। ये सब मंगल के जो है चिन्ह है। श्री राम के आगे अक्षत और सुवर्ण से युक्त पात्र और गऊ और ब्राह्मण और कन्याएं और हाथ में मिठाई लिए अनेक अनेक मनुष्य चल रहे हैं। ये सब चीजें जो है देखना शुभ होता है। अक्षतम जात रूपम च गावा कन्या सहदुजान नरामोदक हस्ताश्चा रामस्य पुरतो यजुः। श्री राम अपने मंत्रियों को सुग्रीव की मित्रता, हनुमान के प्रभाव और अन्य वानरों के अद्भुत पराक्रम की चर्चा करते जा रहे थे। श्री राम अपना गुण नहीं बता रहे हैं, किसका गुण बता रहे हैं? एक तो हनुमान का क्या है प्रभाव, उन्होंने हनुमान के प्रभाव की चर्चा की, हनुमान का कैसा प्रभाव या पराक्रम, और सुग्रीव का की मित्रता का वर्णन किया। सुग्रीव ने जो है कितनी मित्रता निभाई इसका वर्णन किया है, और वानरों के भी जो है वानरों ने भी कितना समर्पण किया युद्ध में। ये वानर जो है बहुत से वानर मारे गए थे, लेकिन फिर श्री राम ने जो है इंद्र को आज्ञा दी कि अमृत की वर्षा से जीवित करो, मेरे कारण जिन वानरों ने अपना शरीर छोड़ा है उनको जीवित करो। तो सब वानरों को जीवित कराया, अमृत की वर्षा करके जीवित कराया। लेकिन राक्षस जीवित नहीं हुए, क्योंकि रावण की आज्ञा से जितने राक्षस मरते थे उनको समुद्र में फेंक दिया जाता था कि भाई ये ना पता चले कि कितने राक्षस मरे हैं। तो इसलिए जो वानर मरे थे तो वो तो युद्ध भूमि में ही थे, तो अमृत की वर्षा से वानर जीवित हो गए, राक्षस जीवित नहीं हुए। वानरों के पुरुषार्थ और राक्षसों के बल की बातें सुनकर अयोध्या वासियों को बड़ा विस्मय हुआ। कैसा युद्ध हुआ था, वानरों ने कैसा पुरुषार्थ किया, राक्षसों में भी कितनी शक्तियां थी, ये सब सुनकर के अयोध्या वासी बड़े विस्मित हुए। श्री राम ने विभीषण से मिलन का प्रसंग भी अपने मंत्रियों से बताया कि विभीषण से भी कैसे मिलन हुआ था। विभीषण को जो है कोई नहीं चाहता था कि भाई इनको रखा जाए, विश्वास करने के पात्र नहीं है विभीषण, क्यों, शत्रु का सगा भाई है। राम ने जो है कहा कि नहीं, कोई डरने की बात नहीं है, अगर विभीषण अगर धोखा भी दे तो भी कुछ नुकसान नहीं कर सकता है, जितने राक्षस हैं एक जो है पलक में भी मारे जा सकते हैं, तो कोई डरने की बात नहीं है। तो इस तरह से राम ने जो है आश्वासन दिया था। तो फिर ये सब बताकर वानरों से श्री राम ने हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उसमें पुरवासियों ने अपने अपने घर में लगी हुई पताकाएं ऊंची कर दी, जो पताकाएं नीची रखी थी वो तुरंत ऊंची कर दी, है ना। ये विशेष जैसे ही राम आते हैं तो पताकाएं ऊंची की गई। पताकाएं तो लगाई थी सबने घर में, लेकिन अंतर भी होना चाहिए ना, श्री राम के आगमन का जो है वो कुछ अंतर होना चाहिए। तो तुरंत जैसे राम आते हैं तो पताकाएं ऊंची की उस समय में। फिर श्री राम एक इक्ष्वाकुवंशी राजाओं के उपयोग में आए हुए पिता के सुंदर भवन में गए। ये पिता का जो भवन है ये चल रहा है इक्ष्वाकु वंश से चल रहा है, इक्ष्वाकु के वंश, इक्ष्वाकु के वंश के जितने राजा हैं उसी महल में रहते हैं। तो पिता के महल में गए श्री राम। उस समय श्री राम ने पिता के भवन में प्रवेश करके माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के चरणों में मस्तक झुकाकर भरत से अर्थयुक्त मधुर वाणी में कहा, भरत मेरा जो अशोक वाटिका से घिरा हुआ मुक्ता और वैदूरी मणियों से जटित विशाल भवन है वो सुग्रीव को दे दो। अब राम तो पिता के भवन में आ गए हैं, तो क्या कह रहे हैं कि जो मेरा भवन था उसमें किसको ठहराओ? सुग्रीव को, बाणों राजा सुग्रीव को मेरे भवन में ठहराओ। किससे कहा? भरत जी से कहा, भरत सिंह को आदेश दिया कि मेरा भवन सुग्रीव को दे दो। उनकी आज्ञा सुनकर भरत ने सुग्रीव का हाथ पकड़कर उस भवन में प्रवेश किया। ले गए, आपको यहाँ पर ठहरना है, वीआईपी, वीआईपी गेस्ट। राम के भवन में सुग्रीव को ले गए। शत्रुघ्न जी की आज्ञा से अनेक अनेक सेवक उसमें तिल के तेल से जलने वाले बहुत से दीपक, पलंग और बिछौने लेकर शीघ्र ही आए। उस समय जो है लाइट कैसे होती थी, तिल के तेल से जो है जो दीपक जलते थे। तत्पश्चात भरत ने सुग्रीव से कहा, प्रभु श्री राम के अभिषेक के निमित्त जल लाने के लिए आप अपने दूतों को आज्ञा दीजिए। अभिषेक का जल लाना है, अभिषेक का जल लाना तो बहुत दूर दूर से और बहुत से पवित्र स्थान हैं जल लाना है, तो आपके जो सेवक हैं बानर हैं वो ये काम कर सकते हैं, जल्दी ला सकते हैं। तब सुग्रीव ने उसी समय चार श्रेष्ठ बानरों को सब प्रकार से के रत्नों से विभूषित चार सोने के घड़े देकर के कहा, चार बानरों को चार सोने के घड़े दिए, रत्नों से विभूषित सोने घड़े चार दिए। तुम लोग कल प्रातःकाल ही चारों समुद्रों के जल से भरे हुए घड़ों के साथ उपस्थित रहकर आवश्यक आदेश की प्रतीक्षा करो। कल प्रातःकाल ही यहाँ आ जाने चाहिए। चारों दिशाओं में जो समुद्र है, पूर्व दिशा में समुद्र है, पश्चिम दिशा में समुद्र बहुत दूर है, बहुत दूर है, दक्षिण दिशा में समुद्र बहुत दूर है, पश्चिम दिशा में समुद्र है, चारों दिशाओं में समुद्र का जो पानी है वो लेकर के सवेरे तक आप तैयार रहिए। आना है, सवेरे तक आ जाना चाहिए समुद्र का जल। तथा प्रत्युष समये चतुर्णाम सागरामसाम पूर्णर्घटे प्रतीक्षत्वं तथा कुरते वानरा। सुग्रीव के इस प्रकार आदेश देने पर हाथी के समान विशाल काय बानर जो करुण के समान शीघ्र चलने वाले थे तत्काल आकाश में उड़ चले, चार दिशाओं में उड़ गए समुद्र का जल लाने के लिए। हाथी के समान बड़े हैं और गरुड़ के समान तेज चलने वाले हैं, आकाश मार्ग से गए। एवं मुक्ता महात्मानो वानर मारणोपमान उत्पेतुर्ग गणम शीघ्रम गरुड़ा एवं शीघ्र गान। और जामवान, हनुमान और गवय और ऋषभ ये सभी वानर चारों समुद्रों से और 500 नदियों से भी सोने के बहुत से कलश भर के लाए, जिनके पास ऋषियों की बहुत बड़ी सेना है वे जामवान संपूर्ण रत्नों से विभूषित स्वर्ण में कलश लेकर गए, उसमें पूर्व समुद्र का जल भर करके लाए। तो जामवान जो है पूर्व समुद्र का पानी भर करके लाए। पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में क्या है? गंगा सागर, वहां से लेके आए। ऋषभ नाम का बानर दक्षिण समुद्र, दक्षिण दिशा लंका की तरफ ऋषभ नामक बानर लाया है। शीघ्र ही सोने का घड़ा भर करके लाए, लाल चंदन कपूर से ढका हुआ वो घड़ा था। फिर गवय पश्चिम दिशा के महासागर से जो है शीतल जल भर करके लाए, पश्चिम दिशा बहुत दूर है, रूस को ही पार करना पड़ेगा, है ना। गव्य पश्चिमात्म आज हर महर्णवान रत्न कुंभे न महता शीतम मारुत विक्रम। और गरुड़ और वायु के समान तीव्र गति से चलने वाले सर्वगुण संपन्न हनुमान जी उत्तरवर्ती महासागर से शीघ्र जल लेकर के आए। अच्छा हाँ, क्षमा करना, पश्चिम दिशा तो इधर है, पश्चिम दिशा तो इधर है, अरब अरब दिशा है। अच्छा उधर है, हाँ तो उत्तर दिशा है, बहुत बहुत दूर तो उत्तर दिशा है, जो उसको भी पार करके जाना पड़ेगा। हनुमान जी गए, ये काम तो हनुमान जी का है, बहुत बहुत बड़ी दूरी है। उन श्रेष्ठ मानवों के द्वारा लाए हुए उस जल को देखकर मंत्रों से शत्रुघ्न ने वो सारा जल श्री राम के अभिषेक के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी अन्य सुहृदों को समर्पित कर दिया। तब ब्राह्मणों सहित वृद्ध वशिष्ठ जी ने सीता से श्री राम को रत्नमयी चौकी पर बैठाया। तत्पश्चात जैसे आठ वसुओं ने इंद्र का अभिषेक कराया था, उसी प्रकार आठ ये हैं मंत्री, आठ मंत्री हैं या ब्राह्मण भी हैं, मंत्री भी हैं। आठ वसुओं ने इंद्र का अभिषेक किया, इसी प्रकार आठ ये ब्राह्मण हैं, मंत्री हैं, वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, कात्यायन, सुयज्ञ, गौतम और विजय, इन आठ मंत्रियों ने सीता सहित श्री राम का अभिषेक कराया। सबसे पहले उन्होंने संपूर्ण अयोध्या के रसों के द्वारा और पूर्वोक्त जल से ऋत्विक ब्राह्मणों के द्वारा, फिर 16 कन्याओं के द्वारा, पहले तो ये आठ ब्राह्मणों ने किया था अभिषेक, फिर 16 कन्याओं ने किया, इसके बाद अन्य अन्य योद्धाओं और हर्ष से भरे हुए श्रेष्ठ व्यवसायियों को भी अभिषेक का अवसर दिया गया। व्यवसायी मतलब व्यापारियों ने, जो श्रेष्ठ व्यापारी थे उनको अवसर दिया गया। उस समय आकाश में खड़े हुए समस्त देवताओं और एकत्र हुए चारों लोकपालों ने भी श्री राम का अभिषेक किया। आकाश से देवताओं ने अभिषेक किया, उनको पृथ्वी में आने की जरूरत नहीं, आकाश से ही पानी गिरा रहे हैं, ये आकाश में खड़े होकर के जल राम के ऊपर डाल रहे हैं। लोकपाल भी आकाश से जल डाल रहे हैं। तब ब्रह्मा जी का बनाया हुआ रत्न शोभित दिव्य तेज से देदीप्यमान किरीट, जिसके द्वारा पहले पहल मनु जी का अभिषेक हुआ था, वो मुकुट मनु से चला रहा है, वैवस्वत मनु, और मनु ने इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए, और इक्ष्वाकु के पुत्र विकुक्षी, इस प्रकार से जो है ये मुकुट मनु की परंपरा से चल रहा है, वो मुकुट अभी तक चल रहा है, 12 करोड़ साल पहले से, 12 करोड़ साल से जो है वो मुकुट वही मुकुट है जो चल रहा है। पहले पहल मनु का उस किरीट के द्वारा अभिषेक हुआ था और उनके सभी वंशधर राजाओं का अभिषेक हुआ था। भांति भांति के रत्नों से चित्रित, सुवर्ण निर्मित, महान वैभव से शोभायमान सभा भवन में अनेक रत्नों से बनी हुई चौकी पर विधिवत रखा गया। फिर वशिष्ठ जी ने अन्य विद्युत ब्राह्मणों के साथ उस किरीट से और अन्य अन्य आभूषणों से श्री राम को विभूषित किया। तो इसमें काफी वर्णन है, इतना समय नहीं हमारे पास में, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, हैंड माइक है।
जैसा हम सुनते हैं कि महाभारत के युद्ध में अगर किसी ने प्राण छोड़े थे तो उसको लिबरेशन में या तो ज्योति में लीन हो गया था या भगवान के धाम चला गया था, पर
ऐसा है कि महाभारत में जिन लोगों ने प्राण छोड़े तो उनकी गति बताई गई, अलग अलग प्रकार की गति मिली है, सबको जो है मुक्ति नहीं मिली। मुक्ति तो उनको मिली जो कृष्ण का दर्शन करते थे, अर्जुन के द्वारा मारे गए और अर्जुन कृष्ण को देखा तो उनको तो जो है विशेष लाभ हुआ, लेकिन बहुत से दूसरे योद्धा हैं वो मारे गए तो उनको अलग अलग प्रकार की गति मिली। हाँ, कम से कम स्वर्ग की प्राप्ति तो निश्चित है कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन कुछ तो ऐसे कि भागते हुए मारे गए तो उनको स्वर्ग भी नहीं मिला, कुछ ऐसे भी थे। तो इस प्रकार से कह नहीं सकते कि सबको जो है मुक्ति मिल गई और वो जो है चले गए, वापस नहीं आए, ऐसी बात नहीं है। हाँ, आपका प्रश्न क्या है?
मैं वही पूछ रहा था कि जो रावण की साइड से मारे गए जो, उनका क्या हुआ?
रावण की साइड से जो मारे गए राक्षस जो मारे गए, वैसे भी सैनिक जो है जो युद्ध करते हैं तो उनको तो जो है लाभ होता ही है युद्ध का। और कोई भी योद्धा जो है अगर युद्ध में सामने से अगर मारा जाता है तो उसकी तो अच्छी गति होती है, और अगर भौतिक इच्छाएं नहीं हैं तो जो है वैकुंठ भी जा सकता है वो। अगर भौतिक इच्छाएं तो स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। तो जो जो है योद्धा हो, चाहे कोई भी हो, राक्षस हो या मनुष्य हो, अगर युद्ध में जो है अगर सामने शत्रु के द्वारा मारा जाता है तो कम से कम स्वर्ग की प्राप्ति तो होती है। लेकिन फिर कुछ भागते हुए मारे जाते हैं, पीछे से मारे जाते हैं, तो उनको फिर स्वर्ग नहीं प्राप्त होता है, अलग अलग प्रकार की गतियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ जी,
धन्यवाद प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है कि जैसे पांडवों ने 13 वर्ष वन में बिताए अपने शर्त का पालन के लिए, और भगवान श्री रामचंद्र भी 14 वर्ष वन में बिताए उन्होंने, जो कि उनको उनके पिता के द्वारा ये आज्ञा मिली थी, तो ये जो संख्या है 14 या 13, ये कुछ विलक्षण है क्या जिसके कारण से उनको इतने ही वर्षों का वनवास भुगतना पड़ा?
14-13 की संख्या का कुछ अर्थ वैसे नहीं बताया गया है, कैकेयी ने जो 14 साल का वनवास मांगा था राम के लिए तो ये विचार करके मांगा था कि अगर राम इतने समय के लिए अयोध्या से बाहर रहेंगे तो प्रजा जो है भरत के अनुकूल हो जाएगी, इतने समय में प्रजा जो है कि अच्छी प्रकार से ब्रेन वॉशिंग हो जाएगी, कि फिर राम वापस आएंगे भी तो कोई महत्व नहीं रहेगा राम का। तो कैकेयी ने इस प्रकार से विचार किया था। तो ऐसे कुछ और कोई विचार नहीं है कि भाई 13 या 14 की ऐसी संख्या। 12 साल का वो जुए की शर्त थी कि 12 साल का वनवास होगा, 1 साल का अज्ञातवास, तो वनवास नहीं है, 1 साल का जो है वो वनवास नहीं था, अज्ञातवास था। वो वन में नहीं रहे, राजा विराट के महल में ही रहे छिप करके, तो वनवास नहीं कहा जाएगा कि छिप करके रहना कि पता ना चले, अगर पता चल गया तो फिर 12 साल का फिर से वनवास, ये जो है मतलब बहुत खतरा था। 1 साल का अज्ञातवास तो बहुत मुश्किल है, 12 साल का वनवास तो फिर भी चल जाए, लेकिन 1 साल का अज्ञातवास बहुत मुश्किल है। और युधिष्ठिर जैसे महात्मा के लिए, भीमसेन जैसे बलवान व्यक्ति के लिए छिप करके रहना बड़ा मुश्किल है, तो ये बहुत कठिन था। अज्ञातवास तो बहुत मुश्किल था, 12 साल का वनवास से भी ज़्यादा 1 साल का अज्ञातवास कठिन था। हाँ जी, आपका प्रश्न।
हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कल भगवान का हम लोग मना रहे हैं कि आविर्भाव दिवस मनाएंगे, तो जैसे हम लोग भगवान का अभिषेक करते हैं और वहाँ पर भी अभी सुग्रीव सारे व्यवस्था कर रहे हैं, तो अभिषेक का मतलब क्या है? राजाभिषेक होता है, क्या होता
है? अभिषेक का मतलब बेदिंग होता है, उसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, बेदिंग बोलते हैं ना, बेदिंग सेरेमनी, बेदिंग सेरेमनी होती है अभिषेक। हैं,
ये क्यों होता प्रोजेन
बेदिंग सेरेमनी? और फिर अभिषेक वो मुकुट जो धारण कराए उसको भी अभिषेक, उसमें भी अभिषेक आ गया, सिर के द्वारा भी अभिषेक हुआ, तो सिर में जो है वो, तो सिर में जो है वो जो है जल डाला जाता है, जल से अभिषेक किया गया, इसके बाद मुकुट से अभिषेक किया गया, तो मुकुट सिर में धारण कराया तो वो भी अभिषेक है। इस तरह से अभिषेक का अर्थ कुछ समझ में आता है। ठीक है, आपका प्रश्न, आखिरी प्रश्न।
हरे कृष्णा भाजी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर रूप से आपने कथा बताई। मेरा प्रश्न है कि जब हम आदर्श शासन की बात करते हैं तो राम राज्य के ऊपर हम अक्सर उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं, जबकि परीक्षित महाराज और युधिष्ठिर महाराज का भी शासन रहा है, तो क्या कारण है कि अपनी श्रेष्ठता जो है राम?
अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको समझना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण का भी द्वारका में राज्य हुआ, लेकिन कुल 125 वर्ष तक तो श्री कृष्ण की जो है लीला हुई, और 11 साल ब्रज में रहे, 18 साल मथुरा में रहे, तो 11 और 18 कितना हो गया, 29, 125 में 29 घटा दो, इतने साल द्वारका में कृष्ण का राज्य रहा। हाँ, तो इतना कम तो कम ही है ना। राम का 11,000 साल तक राज्य रहा, है ना, और सीता जी का वनवास उसके बाद हुआ, ये नहीं समझना है कि उसके बाद जो है सीता जी ने गर्भ धारण किया 11,000 साल के बाद, है ना। तो ये जो है मतलब समझने वाली बात है, सीता जी राम के साथ रहीं और पूर्ण सुख और समृद्धि और पूरी जनता पूरी प्रजा विजय प्रसन्न रही सुखी रही। तो इतना जो है समय की अवधि के अनुसार जो है राम के राज्य की विशेषता है, ठीक है ना। तो ये कहना गलत है कि राम को जैसे राज्य मिला तुरंत फिर सीता का वनवास हो गया, ये दिखाया जाता है ना आजकल कई जगह जगह। लेकिन मुझे एक ऐसा प्रमाण मिला जैमिनी अश्वमेध पर्व में जिससे मुझे बड़ा बल मिला और बहुत मतलब सांत्वना मिली कि हाँ फिर ऐसा क्यों हम लोग सोचते हैं कि राम के राज्य के बाद राम को सुख नहीं मिला फिर सीता का वनवास हो गया, ऐसा नहीं है। तो 11,000 साल के बाद फिर सीता जी का वनवास 12 साल के लिए हुआ, तो वो भी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में वो कथाएँ सुनती रहीं, तो कोई दुख की बात नहीं है। सीता जी के वनवास का भी जो है कोई दुख का विषय नहीं है, है ना। तो ये हमें समझना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। श्री राम कथा महा महोत्सव की, श्री लखरूप आदि की, श्री श्री राधिका रमन जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव कृष्ण बलराम गौर निताई की जय हो। मैं भूल गया।